एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसे यूनानी दार्शनिक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में मौज मस्ती और शायद थोड़ी ज्यादा दावतें वगैरह की तस्वीर उभर आती है।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं एपिक्यूरस की, जो लगभग 341 से 270 ईसा पूर्व, मतलब आज से करीब 2500 साल पहले।
हाँ, 2500 साल पहले जिए। और ये जानना जरूरी है कि एपिक्यूरस आज भी क्यों मायने रखते हैं। वो एक ऐसे दौर में जी रहे थे जो भयानक उथल पुथल, युद्धों और अनिश्चितता से भरा था। कुछ कुछ जैसा शायद हमें आज का दौर लगता है ना।
हाँ कह सकते हैं।
सिकंदर महान की मृत्यु के बाद यूनानी दुनिया बिखर रही थी, बड़े साम्राज्य बन बिगड़ रहे थे। ऐसे माहौल में उन्होंने खुशी और मन की शांति पाने का एक बहुत ही व्यवहारिक, मतलब जमीनी रास्ता सुझाया।
तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन यही है, एपिक्यूरस के दर्शन की परतों को खोलना, उनके बारे में जो आम गलतफहमियां हैं उन्हें थोड़ा दूर करना और ये समझना कि उनकी बातें आज की जिंदगी की जो उलझने हैं उन्हें सुलझाने में कैसे मददगार हो सकती हैं। चलिए जरा उस जमाने की हवा को महसूस करते हैं। कैसा था वो हेलेनिस्टिक काल?
हाँ, तो कल्पना कीजिए, सिकंदर ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके सेनापतियों ने उसे आपस में बांट लिया और फिर लगातार लड़ते रहे।
अच्छा।
जो पुराने यूनानी शहर राज्य थे, जैसे एथेंस या स्पार्टा, जहां नागरिक सीधे शासन में भाग लेते थे, उनका जमाना एक तरह से जा रहा था। अब लोग विशाल बहुसांस्कृतिक साम्राज्यों के नागरिक थे, जहां राजा बहुत दूर बैठा था और नीतियां बदलती रहती थी। इससे लोगों में गहरी असुरक्षा और कह सकते हैं बेगानगी की भावना आई कि अब दुनिया पर, अपनी जिंदगी पर उनका कोई जोर नहीं रहा।
यानी एक तरह का सामूहिक तनाव और चिंता का माहौल।
ऐसे में तो लोग जरूर सुकून की तलाश में होंगे।
हाँ बिल्कुल, और इसी जरूरत ने नए दर्शनों को जन्म दिया। स्टोइकवाद, संशयवाद और एपिक्यूरस का दर्शन, ये सब इसी दौर की देन है। इन सब का फोकस इसी बात पर था कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी अशांत क्यों ना हो, इंसान अपने भीतर शांति और एक सार्थक जीवन कैसे जी सकता है।
और बौद्धिक माहौल कैसा था?
बौद्धिक तौर पर देखें तो एपिक्यूरस डेमोक्रेटस नाम के एक पुराने दार्शनिक के परमाणुवाद से बहुत प्रभावित थे। मतलब ये विचार कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों, परमाणुओं से बनी है।
अच्छा।
लेकिन साथ ही उनका दर्शन प्लेटो और अरिस्तु जैसे बड़े दार्शनिकों के, जो जटिल और थोड़े आदर्शवादी विचार थे, उनकी प्रतिक्रिया भी था। वो दर्शन को आसमान से उतारकर जमीन पर लाना चाहते थे, ज्यादा व्यवहारिक बनाना चाहते थे। चलिए अब इस दिलचस्प इंसान के जीवन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। इनका जन्म यूनान की मुख्य भूमि पर नहीं हुआ था, किसी द्वीप पर।
हाँ, एपिक्यूरस का जन्म सामोस द्वीप पर हुआ था। हालांकि उनके माता पिता एथेंस के नागरिक थे, उनके बचपन में ही राजनीतिक उथल पुथल के कारण परिवार को विस्थापित होना पड़ा। शायद इसी अनुभव ने उनके मन में स्थिरता और शांति की खोज के बीज बो दिए हों।
हो सकता है।
उन्होंने प्लेटो और डेमोक्रेटस के अनुयायियों से शिक्षा ली, लेकिन जल्दी ही अपनी अलग राह बना ली।
और फिर आया वो मोड़ जिसने इतिहास बना दिया, उनका बगीचा, द गार्डन।
बिल्कुल। लगभग 35 साल की उम्र में, 306 ईसा पूर्व के आसपास, उन्होंने एथेंस शहर के ठीक बाहर एक जमीन खरीदी और वहां अपना स्कूल खोला, जिसे केपोज यानी बगीचा कहा गया।
केपोज?
हाँ, ये कोई भव्य इमारत नहीं थी, बल्कि एक शांत जगह जहां उनके अनुयायी इकट्ठा हो सकें। लेकिन ये सिर्फ स्कूल नहीं था, ये एक समुदाय था, मतलब एक जीवन जीने का तरीका था। महिलाओं और यहाँ तक कि दासों का भी बराबर सदस्यों के रूप में स्वागत था।
सच में?
दास भी?
हाँ।
जहाँ प्लेटो की अकेडमी या अरस्तु के लाइसियम में ऐसी बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहीं एपिक्यूरस ने ज्ञान और शांति की तलाश को हर किसी के लिए खोल दिया, चाहे उनकी सामाजिक हैसियत कुछ भी हो। ये दिखा गया कि उनका दर्शन सिर्फ किताबी नहीं था, वो उसे जी रहे थे।
वाव। और सुना है वे लिखने में भी बहुत विपुल थे, मतलब बहुत लिखा उन्होंने।
हाँ, बहुत ज्यादा। कहा जाता है कि उन्होंने 300 से ज्यादा रचनाएं लिखी। हालांकि दुर्भाग्य से उनका ज्यादातर काम समय के साथ नष्ट हो गया।
ओहो।
लेकिन जो बचा है और जो उनके अनुयायियों ने लिखा, उससे उनके विचारों की एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द गार्डन सिर्फ उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहा, उनकी मृत्यु के बाद भी ये लगभग 600 सालों तक फलता फूलता रहा।
600 साल, ये तो कमाल है।
हाँ, ये उनके विचारों की ताकत और उस समुदाय की मजबूती का सबूत है।
एक और बात जो उनके दर्शन को प्रामाणिकता देती है वो है उनका अपना जीवन। कहते हैं वे जीवन भर गुर्दे की पथरी के भयानक दर्द से जूझते रहे।
हाँ, ये सच है।
लेकिन फिर भी शांत और प्रसन्न रहे। ये तो अपने सिद्धांतों पर चलने का जीता जागता उदाहरण है।
बिल्कुल सही कहा, और यहीं से हम उनके दर्शन के, कह सकते हैं, दिल में उतरते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? दो यूनानी शब्द इसे सबसे अच्छे से बताते हैं, अटैरेक्सिया और अपोनिया।
अटैरेक्सिया और अपोनिया, ठीक है।
हाँ, अटैरेक्सिया का मतलब है मन की पूर्ण शांति, मतलब हर तरह की उथल पुथल, डर और चिंता से मुक्ति। और अपोनिया का मतलब है शारीरिक दर्द की अनुपस्थिति। एपिक्यूरिस के लिए यही दोनों मिलकर असली सुख या आनंद थे।
अच्छा, यहीं पे वो मशहूर सुख का सिद्धांत या प्लेजर प्रिंसिपल आता है ना, जिसे लेकर सबसे ज्यादा गलत फहमी है। लोग समझते हैं एपिक्यूरिस का मतलब था बस खाओ पियो मौज करो।
हाँ, और ये उनके विचार के साथ शायद सबसे बड़ा अन्याय है। उन्होंने जरूर कहा कि सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और एकमात्र ऐसी चीज है जो अपने आप में अच्छी है, लेकिन उनका मतलब इंद्रिय भोग या क्षणिक उत्तेजनाओं से कतई नहीं था। उन्होंने सुख के दो स्तर बताए।
दो स्तर कैसे?
पहला, गतिज सुख, किनेटिक प्लेजर्स। ये वो सुख हैं जो किसी जरूरत को पूरा करने से मिलते हैं, जैसे भूख लगने पर खाना खाना या प्यास लगने पर पानी पीना। ये सक्रिय और क्षणिक होते हैं।
ठीक है।
दूसरा और उनके हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण, स्थैतिक सुख।
स्थैतिक, कैटास्टोमैटिक प्लेजर।
ये वो सुख है जो तब महसूस होता है जब कोई जरूरत या दर्द नहीं होता, मतलब जब आप भूखे ना हो, प्यासे ना हो, डरे हुए ना हो, किसी चिंता में ना हो। ये जो शांति और संतुष्टि की अवस्था है ना,
हाँ,
यही असली और टिकाऊ सुख है। एपिक्यूरस के लिए यही श्रेष्ठ था।
वाह, तो असली मजा शांति में है, ना कि पार्टी करने में। ये तो आज की दुनिया की सोच से बिल्कुल उलट है, जहां हम लगातार नई चीजों, नए अनुभवों के पीछे भागते रहते हैं।
बिल्कुल, एपिक्यूरिस का मानना था कि तेज उत्तेजनाओं और विलासता के पीछे भागना अक्सर अंत में दुख या बेचैनी ही लाता है। असली और स्थायी खुशी तो सरल प्राकृतिक इच्छाओं को पूरा करने से मिलती है, जैसे पेट भरने लायक भोजन, तन ढकने लायक कपड़े, रहने के लिए सुरक्षित जगह और सबसे बढ़कर अच्छे दोस्त। और साथ ही उन चीजों को हटाना जो हमें डराती हैं। उन्होंने सादगी पर जोर दिया। शायद उनके लिए शांति से दोस्तों के साथ खाई गई जौ की रोटी और थोड़ा पनीर किसी राजा के शाही भोज से ज्यादा सुखद था।
ये डर को हटाने वाली बात बहुत अहम लग रही है। इसके लिए उन्होंने एक चौगुनी दवा या चतुर्विध औषधि टेट्राफार्माकोस का फॉर्मूला दिया था। ये सुनने में किसी जादुई नुस्खे जैसा लगता है।
हाँ, कह सकते हैं ये उनके दर्शन का एक तरह से फर्स्ट एड किट था, जो मन की चार सबसे बड़ी चिंताओं का इलाज करता था।
अच्छा, क्या थी वो चार बातें?
पहला, ईश्वर से मत डरो। उनका मानना था कि देवता हैं, पर वे इतने परिपूर्ण और अपने आनंद में मग्न हैं कि उन्हें इस छोटी सी दुनिया के इंसानों के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो ना हमें सजा देते हैं ना इनाम, तो उनसे डरना बेकार है।
ओके, दूसरा?
दूसरा, मृत्यु से मत डरो। ये उनका सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। उन्होंने कहा, मौत हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं?
क्यों? क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं, मौत आई नहीं है, और जब मौत आ जाएगी तब हम होंगे ही नहीं।
हाँ, ये बात तो है।
हम कभी मरे हुए होने का अनुभव कर ही नहीं सकते, तो जिस चीज का अनुभव भी नहीं हो सकता उससे डरना कैसा? ये एक तर्कपूर्ण नजरिया है डर को काटने का।
ठीक है, तीसरा?
तीसरा, जो अच्छा है उसे पाना आसान है। उनका मतलब था कि असली सुख के लिए जरूरी चीजें, यानी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति और मन की शांति, मुश्किल नहीं है। हमें शानदार चीजों की जरूरत नहीं, सादगी ही काफी है।
और चौथा?
चौथा, जो बुरा है उसे सहना आसान है। उनका कहना था कि शारीरिक दर्द या तो बहुत तेज होता है पर थोड़ी देर का, या फिर लंबा चलता है पर हल्का होता है जिसे सहा जा सकता है, और मानसिक दुख को समझदारी और सही नजरिए से कम किया जा सकता है।
ये तर्क तो मतलब बौद्धिक रूप से बड़े शक्तिशाली लगते हैं, खासकर मौत वाला तर्क। पर क्या आपको लगता है कि ये वाकई मौत के गहरे भावनात्मक डर को कम कर सकता है? क्या लोगों के लिए इसे दिल से अपनाना इतना आसान था?
ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद आसान शब्द यहाँ सही ना हो। एपिक्यूरस का उद्देश्य शायद डर को पूरी तरह मिटाना नहीं था, बल्कि उसे तर्क की कसौटी पर कसकर उसकी पकड़ को ढीला करना था। वो दिखाना चाहते थे कि डर अक्सर अतार्किक होता है। अगर हम समझ लें कि मौत के बाद हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा, तो उससे जुड़ी काल्पनिक पीड़ाओं का डर कम हो सकता है। ये एक मानसिक अभ्यास है जिसे लगातार करना पड़ता है, ये एकदम से नहीं होता।
समझ गई। और इन सब विचारों की नींव उनके भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण में थी, है ना? ये परमाणु वाली बात जो आपने शुरू में कही थी।
हाँ बिल्कुल, यहीं पर डेमोक्रेटस का प्रभाव साफ दिखता है। एपिक्यूरस मानते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, हम, हमारे विचार, सब कुछ बस दो चीजों से बना है, बेहद छोटे अविभाज्य कण जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं, और खाली जगह यानी शून्य, वॉइड, जिसमें ये परमाणु घूमते और टकराते रहते।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में किसी जादू टोने, भूत प्रेत या देवी देवताओं के गुस्से के लिए कोई जगह ही नहीं बची। अगर सब कुछ सिर्फ परमाणुओं का खेल है, तो फिर अलौकिक शक्तियों से डरने की जरूरत ही क्या है?
बिल्कुल यही। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक भौतिकवादी व्याख्या थी दुनिया की। इसने अंधविश्वासों की जड़ पर ही चोट की। और जैसा हमने पहले कहा, देवता अगर हैं भी तो वे भी इन्हीं परमाणुओं से बने हैं, बस थोड़े अलग किस्म के, और वे हमारे जीवन में दखल नहीं देते।
अच्छा,
तो ईश्वरीय दंड का डर भी खत्म। इस तरह उनका भौतिकवाद सीधे सीधे अटारेक्सिया यानी मानसिक शांति लाने में मदद करता था, क्योंकि डर के कई बड़े स्रोत ही खत्म हो जाते थे।
लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर सब कुछ परमाणुओं के तयशुदा गति से ही हो रहा है, मतलब सब कुछ पहले से तय है, तो फिर हमारी आजाद मर्जी कहाँ गई? क्या हम बस कठपुतलियां नहीं हैं जिनके धागे परमाणुओं के नियमों से बंधे हैं?
का विचलन एटॉमिक स्वर्व, क्लिनमैन।
क्लिनमैन ये क्या है?
सोचिए कि परमाणु सीधी रेखा में नीचे गिर रहे हैं, जैसे बारिश की बूंदें। लेकिन एपिक्यूरस ने कहा, कभी कभी बिना किसी बाहरी कारण के एक परमाणु अपने रास्ते से जरा सा अप्रत्याशित रूप से भटक जाता है, एक हल्का सा विचलन या स्वर्व।
बिना किसी कारण के?
हाँ, यही खास बात है। ये छोटा सा यादृच्छिक भटकाव ही वो चीज है जो चीजों को पूरी तरह पूर्व निर्धारित होने से रोकता है, और हमें यानी हमारी आत्मा को बनाने वाले परमाणुओं को चुनाव करने, निर्णय लेने की भौतिक संभावना देता है। इसी वजह से हम सिर्फ मशीन नहीं हैं, बल्कि अपनी मर्जी के मालिक बन सकते हैं।
ये तो कमाल का विचार है। मतलब भौतिक चीजों से ही इच्छा शक्ति की गुंजाइश निकाल ली। अच्छा, उनकी रचनाओं की बात करें तो आपने कहा ज्यादातर खो गई हैं। फिर हमें उनके बारे में इतना सब कैसे पता है?
हाँ, ये दुख की बात तो है, लेकिन खुशकिस्मती से उनके तीन महत्वपूर्ण पत्र बच गए हैं, जो बाद के एक लेखक थे डाइजीनियस लायर्टियस, उन्होंने सहेज लिए।
अच्छा।
एक पत्र हेरोडोटस को है, जिसमें उनके भौतिक विज्ञान का सार है। दूसरा और शायद सबसे मशहूर मेनोसियस को पत्र है, जिसमें उनके नैतिक दर्शन, खुशी, मौत, सुख कैसे पाएं का बहुत ही सरल और सुंदर वर्णन है। तीसरा प्रमुख सिद्धांत नाम से 40 मुख्य सूत्रों का संग्रह है, जो शायद उनके अनुयायियों को याद रखने के लिए थे। इनके अलावा उनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ था ऑन नेचर, उसके कुछ टुकड़े मिले हैं। और हाँ, एक रोमन कवि थे ल्यूक्रेशियस, उनकी लंबी कविता है डी रेरम नचूरा। डी रेरम नचूरा, उसने उनके दर्शन को एक तरह से अमर बना दिया।
अच्छा, अगर उनकी तुलना उस दौर के दूसरे बड़े दार्शनिकों से करें, जैसे स्टोइक थे, जिनसे उनकी काफी बहस भी रहती थी शायद।
हाँ बिल्कुल, स्टोइक और एपिक्यूरियन, ये दो मुख्य प्रतिस्पर्धी दर्शन थे उस समय। स्टोइक कहते थे कि जीवन का लक्ष्य सद्गुण, वर्च्यू और कर्तव्य, ड्यूटी निभाना है, भावनाओं पर काबू रखना है और समाज में सक्रिय भूमिका निभानी है। वहीं एपिक्यूरस कहते थे कि लक्ष्य सुख है, मतलब शांति और दर्द मुक्ति, और इसके लिए अक्सर सार्वजनिक जीवन की जो आपाधापी है उससे दूर रहना बेहतर है।
मतलब एक तरह से बिल्कुल विपरीत।
काफी हद तक, जैसे मान लीजिए दुख का सामना हो रहा है, तो स्टोइक कहेगा कि इसे हिम्मत और शांति से सहो, क्योंकि यह भाग्य है। एपिक्यूरस शायद सलाह देंगे कि दर्द कम करने के व्यावहारिक तरीके खोजो, ध्यान बंटाओ, और हाँ, दोस्तों का सहारा लो।
और प्लेटो अरस्तु से तुलना करें तो उनसे कैसे अलग थे ये?
प्लेटो आदर्श दुनिया, अमूर्त सत्यों और आदर्श राज्य की बात करते थे। अरस्तु तर्क, विज्ञान और नागरिक जीवन पर जोर देते थे। इन दोनों के मुकाबले एपिक्यूरस का दर्शन बहुत ज्यादा व्यक्तिगत, व्यवहारिक और कह सकते हैं जमीनी था। उनका सरोकार इस बात से था कि एक आम इंसान इसी दुनिया में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कम दुख और ज्यादा शांति पा सकता है। उनका नजरिया ज्यादा चिकित्सीय, थेरेप्यूटिक था, मतलब इलाज करने वाला।
उनकी विरासत की बात करें तो रोमन काल में तो वो बहुत लोकप्रिय थे, जैसा आपने ल्यूक्रेशियस का जिक्र किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्हें भुला दिया गया?
हाँ, ईसाई धर्म के आने के बाद एपिक्यूरस के विचारों को जानबूझकर दबाया गया और गलत तरीके से पेश किया गया। जो कि वे देवताओं को उदासीन मानते थे और सुख को लक्ष्य, उन्हें नास्तिक और भोगवादी करार दिया गया। सदियों तक एपिक्यूरियन शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल होता रहा।
ओह, ये तो बुरा हुआ।
हाँ,
लेकिन फिर ज्ञान की रोशनी दोबारा फैली होगी।
बिल्कुल, पुनर्जागरण और खासकर प्रबोधन काल एनलाइटनमेंट में उनके विचारों को फिर से खोजा गया और सराहा गया। थॉमस जेफरसन अमेरिका के संस्थापकों में से एक ने तो गर्व से कहा था, मैं भी एक एपिक्यूरियन हूँ।
अच्छा।
और आज भी उनके विचार चिंता कम करना, सादगी में खुशी खोजना, मौत के डर का सामना करना, दोस्ती का महत्व, ये सब बहुत प्रासंगिक लगते हैं। कई लोग उन्हें आधुनिक माइंडफुलनेस और वेलनेस मूवमेंट का प्राचीन अग्रदूत मानते हैं।
और ये जरूरी है कि हम उस एपिक्यूरियन शब्द वाली गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर दें। आज अगर कोई कहता है कि वो एपिक्यूरियन है तो उसका मतलब होता है कि उसे बढ़िया खाने पीने और महंगी चीजों का शौक है। ये तो बिल्कुल उल्टा है जो बेचारे एपिक्यूरस सिखा रहे थे, सादगी और संयम।
बिल्कुल, ये विडंबना ही है। हालांकि उनकी आलोचना भी होती है, ये भी कहना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका समाज से कटकर गुमनामी में जियो, लथेबियोसास का जो उपदेश था वो थोड़ा गैर जिम्मेदाराना था। कुछ दार्शनिक सवाल उठाते हैं कि क्या उनका दर्शन, जो जटिल नैतिक दुविधाएं होती हैं, उनका समाधान दे पाता है।
ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, इतनी सारी उथल पुथल, डर से बचने के नुस्खे, सादगी की बातें, इन सब के बीच एक चीज जो शायद उस बगीचे में मरहम का काम करती होगी, वो थी दोस्ती। एपिक्यूरस ने दोस्ती पर बहुत जोर दिया है ना?
हाँ, बहुत ज्यादा। दोस्ती उनके दर्शन का शायद सबसे गर्मजोशी भरा और दिल को छूने वाला पहलू है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, जीवन को पूरी तरह से सुखी बनाने के लिए ज्ञान जो कुछ भी प्रदान करता है, उन सब में सबसे महान है दोस्ती का अधिकार।
वाह, दोस्ती का अधिकार।
हाँ, उनके लिए दोस्ती सिर्फ गपशप या साथ घूमने फिरने की चीज नहीं थी, बल्कि ये सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए अनिवार्य थी। उनका मानना था कि भरोसेमंद दोस्तों का साथ दुनिया की अनिश्चितताओं और मुश्किलों के खिलाफ सबसे बड़ा कवच है।
और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उनके बगीचे में ये दिखता था। दोस्त साथ रहते थे, पढ़ते थे, बहस करते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे। कहते हैं वे नियमित रूप से साथ भोजन करते थे, जो सादा होता था। हाँ, लेकिन मेलजोल और अपनेपन से भरा होता था।
हाँ, बिल्कुल। और कुछ किस्से भी बहुत दिलचस्प हैं, जैसे हमने जिक्र किया था महिलाओं और दासों को शामिल करने का।
हाँ हाँ,
उनमें एक लियोन्टियन नाम की शिष्या थी जो पहले एक गणिका थी।
क्या बात
है। उस जमाने में एथेंस में एक पूर्व गणिका दर्शन पर बहस कर रही थी और ग्रंथ लिख रही थी। ये दिखाता है कि द गार्डन कितना अलग और प्रगतिशील था।
सही में। और वो बगीचे के गेट पर लिखा वाक्य, वो क्या था?
हाँ, कहते हैं वहां लिखा था, अजनबी यहाँ तुम्हारा रहना अच्छा होगा, यहाँ हमारा सर्वोच्च अच्छा सुख है। ये किसी रेव पार्टी का न्योता नहीं था बल्कि एक शांत, चिंतनशील और दोस्ती से भरे जीवन का निमंत्रण था। ये दिखाता है कि उनके लिए सुख का मतलब क्या था, शांति, सुरक्षा और सार्थक रिश्ते।
तो कुल मिलाकर एपिक्यूरस एक ऐसे दार्शनिक थे जो दर्शन को किताबों से निकालकर जिंदगी में ले आए।
बिल्कुल,
उसे जीने लायक बनाया।
बिल्कुल, वो शायद इतिहास के सबसे व्यवहारिक और थेराप्यूटिक यानी चिकित्सीय दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने उथल पुथल के बीच इंसान के फलने फूलने का एक पूरा नक्शा पेश किया। उनका संदेश आज भी गूंजता है, असली खुशी दौलत, ताकत या किस्मत में नहीं, बल्कि मन की शांति अटारेक्सिया, शरीर के दर्द से मुक्ति अपोनिया, तर्कसंगत सोच, सरल जीवन और सबसे बढ़कर सच्ची दोस्ती में है। उन्होंने हमें सिखाया कि डर पर काबू पाया जा सकता है और खुशी, हाँ खुशी, हासिल की जा सकती है।
उनका दर्शन वाकई आत्मा के लिए एक औषधि जैसा लगता है, एक ऐसा नुस्खा जो शायद आज की दौड़ती खाकती चिंता भरी दुनिया में पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।
निश्चित रूप से। और यही हमें आज के लिए एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है, श्रोताओं के लिए भी सोचने को। आज के इस तेज रफ्तार, उपभोक्तावादी और अक्सर चिंताग्रस्त दुनिया में क्या एपिक्यूरस का सरल सुखों, सच्ची दोस्ती और मानसिक शांति पर जोर देना हमें वास्तविक और टिकाऊ सुखों पाने में मदद कर सकता है? क्या हमें उनकी चौगुनी दवा की आज पहले से ज्यादा जरूरत है?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।